पूर्ण शांत। यूके में सेवा स्थान और सेवा अच्छी चल रही है। स्थान लेने में तो मेकअप कर रहे हो, लेकिन स्थिति में भी मेकअप कर रहे हो, अच्छी रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि आप सभी के बड़ी दिलों का सहयोग है। यह सहयोग ही सेवा बड़ा कर रहा है। चाहे निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन देखा गया है कि यूके वालों की हर कार्य में दिल बड़ी है, उसका प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। अभी यूके को फॉलो करो, फ्रांस, कनाडा सब फॉलो करो। अभी जिन्हें सहयोगी बनाना है उन्हों को वारिस बनाओ। एक तरफ वारिस बनाओ, दूसरी तरफ माइक बनाओ। लंदन वालों ने इतना बड़ा माइक नहीं निकाला है जो इंडिया तक आवाज आए। लंदन का लंदन में ही आवाज है। आप तो विश्व कल्याणकारी हो ना। जब बड़ी दिल रखने वाले हो तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलना ही है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल। कभी भी स्वयं प्रति व सहयोगी आत्माओं के प्रति, साथियों के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। यह विधि बहुत अच्छी है। बड़ी दिल रखने से, जैसे गाया हुआ है, मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाता है, असंभव सफलता संभव हो जाती है। बड़े दिल वाले होना, मैं करने वाले तो नहीं होना, या मैं जो करता है उसे कहेंगे कमजोर दिल और बलि का बकरा, और दिल को क्या कहेंगे?
कंजूस
दिल और मनहूस दिल। मैं जो दिल करता है उस दिल को क्या कहेंगे? चिमन भाई, मरा हुआ देह अभिमानी दिल,
छोटा
दिल। और ये मैं जो करता है उसे कहेंगे बकरी दिल, और बड़ी दिल वालों को कहेंगे शेर दिल। शक्तियों की सवारी किस पर है? बकरी के ऊपर है या शेर के ऊपर है? शेर पर है ना। आप भी शक्ति से ना हो तो शेर पर सवारी है ना। मैं को बलि चढ़ा लिया ना, समाप्त कर दिया, तो सदा यह स्मृति में रखो कि हर सेकंड, हर संकल्प को सफल करते हुए सफलता का अधिकार हर समय प्राप्त करते रहेंगे। तो बाबा यूके से मिल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? रिजल्ट अच्छी है क्योंकि आप सभी के बड़ी दिल का सहयोग है। दिल बड़ा है, विशाल है, यह सहयोग ही सेवा बड़ा कर रहा है। चाहे निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन देखा गया यूके वालों को कि हर कार्य में बड़ी दिल है। जब बड़ी दिल रखते हो तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल। कभी भी स्वयं प्रति व सहयोगी आत्माओं के प्रति, साथियों के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल से क्या हो जाता है? मिट्टी भी सोना, कमजोर साथी भी शक्तिशाली, असंभव सफलता भी संभव। तो बाबा कह रहे हैं बड़ी दिल रखो, विशाल दिल रखो। कैसे करेंगे दिल को बड़ी? संकुचित दिल नहीं, ऑपरेशन करके उसको बड़ी करना पड़ेगा। भावनाओं को विशाल कर, बड़ी दिल अर्थात सबके प्रति शुभ भावना। बड़ी दिल अर्थात सब हमारे है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सबका भला हो, बेहद की भावना। बड़ी दिल अर्थात विशाल बेहद उदार उदार चित्त उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। सब हमारे, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। बड़ी दिल अर्थात स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भरपूरता संपन्नता, कोई खालीपन नहीं। हाँ, तो बड़ी दिल अर्थात जो देते हैं, दानवीर, दानवीर करना दिखाते हैं ना, ये जो ऐसी महान आत्मा है जो देने के लिए मशहूर है, तो वो बड़ी दिल है, संकुचित दिल नहीं। ट्यूब्युलर विजन जिसको कहते हैं, केवल इतना ही देखना, बस अपना ही देखना, वो नहीं। निस्वार्थ, निष्काम, निस्वार्थ, उदार, देने की भावना, दातापन के संस्कार। और बड़ी दिल अर्थात यहाँ क्या कहा बाबा ने, मैं शेर दिल, साहसी, पराक्रमी, शूर, मैं करने वाले नहीं। मैं करने वाले बड़ी दिल नहीं हो सकते। वो कौन सी दिल है? बकरी दिल। बड़ी दिल वाले को कहेंगे शेर, शेर दिल। तो हम सब है शिव शक्तियां, तो शक्तियों की सेवा सवारी किस पर है? शेर पर। तो बाबा ने कहा मैं को क्या करो, बलि चढ़ा दिया ना, समाप्त कर दिया। तो बड़ी दिल रखेंगे तो क्या होगा, स्वयं को भी फायदा है और दूसरों को भी फायदा है। दूसरों को क्या हो जाएगा, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाएंगे। कैसे? सहयोगी बन जाएंगे। कैसे? महिमा करेंगे उसकी। गुणों की माला पहनाएंगे, साथियों को शक्तिशाली बनाएंगे, कमजोरियों को नहीं देखेंगे, अवगुणों को नहीं देखेंगे, अवगुण होते हुए भी उनको फैलाएंगे नहीं, ऐसे समझेंगे ये जैसे हमारे है। तो ये सब बड़ी दिल की, बड़ी दिल अर्थात जो सम्राट होते हैं उनकी बड़ी दिल होती है, जो छोटे मोटे होते हैं साहूकार वो सब नहीं होते, जो राजा होते हैं, जो सम्राट होते हैं, सम्राट होके जो सम्राट है उनकी बहुत विशाल बड़ी दिल होती है। क्षमा करने का भाव, जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं ना कि हे प्रभु मुझसे बड़ा पापी संसार में कौन है, कोई नहीं, पर तुझसे बड़ा क्षमा करने वाला भी कौन है। अगर मेरे जैसा कोई पापी संसार में नहीं है तो तुझसे बड़ा कौन है जो मेरे जैसे को क्षमा करे, तुझसे बड़ा ऐसा कोई नहीं है। तो क्षमा करने का भाव, अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड कौन सा है? क्षमा। अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड है क्षमा। कोई कितना किसी ने कुछ भी किया हो, बाबा के पास हम जब आए थे तो हम बहुत पुण्य आत्मा बनकर आए थे क्या? कैसे आए थे? गिरे हुए। कोई महान कर्म करके आए थे? कोई पुण्य कर्म करके आए थे कि अपराधी अपराध करके आए थे? दुर्दांत अपराधी ऐसे बनकर आए थे ना। तो बाबा ने क्या कर दिया,
हम लोग अपराध को अपराध सोचते नहीं,
पर वो था ना, अपराधी सोचे या ना सोचे, पर वो तो है, था ना। परंतु जो भी है, तो बड़ी दिल रखने से बाबा कहते हैं मिट्टी भी सोना, तुरंत समर्पण।
बाबा का जो
जैसे एक दादी के लिए कहते हैं ना, प्रकाश मेरी दादी के लिए एक बार शायद सबने सुना होगा, सफेद कपड़े और जेब खाली,
ये बड़ी दिल।
बड़ी दिल अर्थात सबको समाने की भावना। जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं या जितने हमारे अंडर काम कर रहे हैं उनमें बहुत सारे अवगुण हैं, एक एक चीज समझ में नहीं आती उनको, फिर भी उनके अवगुणों को समाकर उनको चलाना और लंबे समय तक चलाना, यह है बड़ी दिल। दादी के लिए बताते हैं ना, सबने सुना होगा, कोई एक सेवाधारी भाई आया नया शांतिवन में नया, फिर उसको किचन में ड्यूटी दी गई। तो ड्यूटी दी गई वो उसको क्या कहते हैं, शक्कर का जो बनता है, नहीं पानी, चाशनी। तो वो सुबह सुबह 3-4 बजे चला गया बड़े किचन में, बड़े इसमें रखा हुआ था, उसको लगा पानी है उसने उलट दिया पूरा तो फिर जब सबको पता चला तो एकदम वो तो घबरा गया, क्योंकि वो कितना सारा था, पूरा भर के था बड़े इसमें। तो वो बात ऊपर ऊपर गई, उसके इंचार्ज को पता चला और उसको तो एकदम इतना दहशत, जैसे वो अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, शॉक में था वो, सदमा जिसको कहते हैं ना, ऐसी स्थिति में कि इतना बड़ा नुकसान कर दिया मैंने, उसको लगा पानी है और उलट दिया उसने पूरा के पूरा। और फिर बाद में पता चला ये ऐसा है, फिर उसके इंचार्ज को पता चला, फिर उसके इंचार्ज को पता चला, बाद में न्यूज आई कि दादी ने तुमको कॉटेज में बुलाया है तो वो तो इतना डर गया कि अब क्या करे, फिर भी गया। तो वो मतलब उसको दादी बैठे थे और दादी ने जब उसको देखा तो उसको देखते ही दादी को पता चल गया कि इसको क्या हुआ है, उसको समझ में आ गया। तो दादी ने कहा आओ बैठो। तो फिर दादी ने पूछा नाश्ता किया है, तो बोला कुछ बोला ही नहीं, तो उसको नाश्ता कराया और बोला अभी बाकी सब ठीक है, हाँ ठीक है, तो अभी जाओ बस जाओ, खत्म, कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं। अभी उसको और क्या बताए, उसको तो समझ में आ गया ना कि गलती हो गई है। जिसको रियलाइज हो गया है उसको ऊपर से और रियलाइज कराना कि जरूरत नहीं है। तो ये जो है, ये है बड़ी दिल। बड़ी दिल अर्थात दूसरों के हृदय में घुसकर उसकी स्थिति को जान लेना क्या है वो। ट्यूबुलर विजन नहीं, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, सबको संभाल लेना। क्योंकि अगर उसको डांट दिया होता उस समय, या एक शब्द भी कह दिया, तो चलो डांटना नहीं, थोड़ा भी कुछ कह दिया, इतना भी नहीं कहा कि अगली बार ध्यान रखना, उतना भी नहीं कहा, कुछ कहा ही नहीं, बस वैसे ही भेज दिया। अगर थोड़ा भी कहा होता तो कुछ तो उसको फील होता है। तो ऐसे एक दूसरे भी, हम बचपन में जब 6th स्टैंडर्ड में थे, हमारे किताब में एक कहानी थी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में 3 अपराधी आते हैं तो राजा के सामने। पहले अपराधी को राजा देखता है, तो राजा उसको, तीनों ने कुछ तो बड़ी एक चोरी की होती है, कोई तो खराब काम किया होता है। तो पहला जो अपराधी है उसको राजा कहता है कि इस, खाली उसको इतना कहता है कि अगली बार ऐसा मत करना, तो वो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। इतना उसके ऊपर असर होता है उस बात का, केवल इतना कहते हैं कि ये तुमने जो किया ये ठीक नहीं किया, अगली बार से मत करना, इतना ही कहता है बस, तो वो जाकर आत्महत्या कर लेता है सीधा। इतना उसके अंदर वो ग्लानी भर जाती है। दूसरी आत्मा को राजा थोड़ा डांटता है, कहता है ये तुमने बहुत खराब किया, और बहुत सारी बातें उसको कहता है, ये तुमको शोभा नहीं देता, ऐसा है वैसे, बहुत उसको डांटता है। तो वो जाता है और अपने आप को कमरे में बंद कर देता है और किसी से बात नहीं करता, उस पर इतना ज्यादा डांटा उसको। पहले को तो कुछ कहा ही नहीं था, तो उसने जाकर चीवघात कर दिया, दूसरे को डांटा तो उसने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और आया ही नहीं कभी बाहर। तीसरे को जब राजा ने देखा तो तीसरे को तो राजा ने बहुत बड़ा दंड दिया, उसको कहा कि इसको तो गधे पर बिठाओ और चप्पल की माला इसको पहनाओ और सारे गांव में इसको घुमाओ। और जब उसको वैसे घुमाने लगा फिर भी वो हंस रहा था दंड एक, परंतु आत्मा पर प्रतिक्रिया अलग अलग। तो ये पहचानना, दूसरी आत्माओं को पहचानना, ये ऊंची अवस्था है। कभी बाबा ने दीदी को कहा हुआ है कि एक समय आएगा कि तुम लोगों को पता चल जाएगा, थॉट रीडिंग जो कहते हैं ना, वैसा होने लगेगा। आगे की आत्मा की किस भाव से तुम्हारे पास आया हुआ है, उसकी क्या इच्छा है, किस भाव से, मतलब कितने समर्पण भाव से वो यहाँ आ रहा है, वो तुम पकड़ लोगे। एक समय आएगा कि बाबा ने कहा है कि ड्रामा, अभी तुम कहते हो कि जो होगा ड्रामानुसार होगा, एक समय आएगा कि तुम्हारे संकल्प और ड्रामा पैरेलल चलेंगे, जो तुम सोचोगे वो होते जाएगा, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो बड़ी दिल अर्थात, और भी कुछ है बड़ी दिल अर्थात, दूसरों को समझ लेना, रियलाइज कर लेना। क्षमा कर देना उनको। और बड़ी दिल अर्थात रहम, रहम करना। और बड़ी दिल अर्थात वो भी बड़ी दिल। अच्छा और सहयोगी बनाना, बनना दोनों दोनों।
जैसे डायमंड हाउस शादी को हुआ ही पड़ा, ग्लोबल से डायमंड बना, तो एकदम ये था रिश्ते का।
बड़ी दिल अर्थात जिसमें त्याग हो। बड़ी दिल के लिए आंतरिक त्याग की आवश्यकता है। बिना त्याग के कोई बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे कल भी मैंने जो कहानी बताई थी ना, एक बहुत बड़ा दार्शनिक था जिसका नाम था वाचस्पति मिश्रा। 10वीं शताब्दी में उसकी एक बहुत ही फेमस किताब है, प्रसिद्ध, जिसका नाम है भामती। वो है टिप्पणी है एक वेदांत ब्रह्म सूत्र पर, उसका भाष्य है। तो वो ऐसा व्यक्ति था कि बचपन से वैरागी स्वभाव था उसका और निरंतर अपने अध्ययन में लगा रहता था। बस उसके सिवा उसको कुछ पता ही नहीं संसार। तो उसकी माता और पिताजी को इतनी चिंता हुई कि लगा कि अब इसकी शादी कर दो तो हमारा क्या होगा बुढ़ापे में। तो उनको डर था कि अगर हमने इसको शादी की बात कही तो शायद ये मना कर देगा। पर जब उन्होंने कहा कि आप शादी कर दो तो उसने कहा ठीक है, तो वो तो खुश हो गए क्योंकि वो इतना व्यस्त था अपने अध्ययन में, शास्त्रों के अध्ययन में। उसने कहा ठीक है कर लेता हूं। तो शादी हो गई, शादी हो गई और उसके बाद में वो भूल ही गया पत्नी को। उसे पता ही नहीं कि पत्नी है घर में। माता पिता तो चले गए और वो 12 साल तक वो अपना अध्ययन करता रहा। भोजन आता था वो ये नहीं देखता था कौन ला रहा है, वो खा लेता था। वो बत्ती रात में जलती थी उसको ये नहीं पता था कौन। तो उसकी पत्नी 12 साल तक चुप। और उसको भी लगा कि मुझे ये जो कार्य कर रहा है इसमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, इसकी शांति को भंग नहीं करना है। 12 साल तक वो उसकी सेवा करती रही, उसको पता ही नहीं चला, उसका ध्यान ही नहीं उस तरफ क्योंकि वो तो भूल ही गया कि मेरी शादी भी हुई थी। उसको कहा था कि शादी करो, वो अध्ययन कर रहा था, गया फेरे लगाए, मंत्र पढ़े और वापस आके अपने अध्ययन में लग गया। तो उसको ये भूल गया कि मेरी शादी भी हुई है। 12 साल ऐसे ही गुजर गए और उसने ये एक संकल्प रखा था कि जिस दिन मैं ये जो भाष्य लिख रहा हूं, जिस दिन उसे पूरा करूंगा, उसके दूसरे ही अगले दिन सुबह सुबह संन्यास ले लूंगा, इस संसार का त्याग कर दूंगा। अभी 12 साल गुजर गए, अंतिम रात थी, रात के लगभग 12 बजे थे और उसकी जो दिया था जिसमें वो अभी बस थोड़ा सा ही बाकी था, अभी वो थोड़ा सा रिलैक्स था कि बस थोड़ा सा ही लिखना बाकी है, उतने में वो दिया बुझ गया। तो किसी ने एक उसकी पत्नी जो थी उसने उसको दिया जलाने की कोशिश की तो उसको पहली बार उसका हाथ दिखा। तो कहा कि हे देवी आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं, 12 साल पहले आपने मुझसे शादी की थी। तो बोलता अच्छा। तो उसको बहुत जैसे, तो इतने साल कहा थी? तो बोलते मैं यही थी, आपकी सेवा में थी। बोलते मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा बोलते कैसी हो? तो बोलते मैं ठीक हूँ। तो फिर अभी? तो बोलते अभी तो मैं, वो उसको दुख होता है बहुत, अभी क्या करूँ, अभी तो मैं सुबह तो जाने वाला हूँ, मैंने तो तुमको ना प्रेम दिया ना पति का कर्तव्य निभाया। उसने कहा कि आपने इतना जो पूछा ना कैसी हो, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, अब इसी के सहारे मैं सारा जीवन गुजार सकती हूँ। और वो सुबह निकल जाता है। तो वो जो ग्रंथ वो जो लिखता है, वो जो ग्रंथ लिखता है उसी समय वो कहता है कि इस ग्रंथ का नाम तुम्हारे नाम से दूंगा मैं, भामती। बाकी भामती शब्द का उस ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, ब्रह्म सूत्र कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, आज भी अवेलेबल है। ये जो भामती स्कूल ऑफ थॉट है, एक मतलब अद्वैत वेदांत का जो शंकराचार्य आया उसके बाद पहला भाष्य जो लिखा गया वेदांत पर, वो वाचस्पति द्वारा, वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखा गया है। तो वो मतलब उसके अंदर ये होता है कि मैं इसके लिए अब क्या करूं। तो कहता मैं तेरे नाम ही दे रहा हूं। उसी के सामने वो लिख देता है और ग्रंथ का नाम देता है भामती और दूसरे दिन निकल जाता है। तो उसकी पत्नी क्या कहती है, आपने इतना जो पूछा मुझे कि कैसी हो, बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। तो कितना बड़ा त्याग है, कौन बड़ा है, वो या वो? दोनों ही बड़े हैं। तो ये जो बड़ी दिल अर्थात जहां पर बहुत त्याग हो तभी आत्मा महान बन सकती है। तो बाबा कह रहे हैं मैं वाले जो है वो है बकरी दिल और बड़ी दिल वाले जो है वो है शेर दिल। तो मैं को क्या करो, बलि चढ़ाओ। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हर सेकंड हर संकल्प को सफल करते हुए, ये मुरलीधर सफलता के ऊपर थी ना, हर सेकंड हर संकल्प को सफल करते हुए सफलता का अधिकार हर समय प्राप्त करते रहेंगे। अच्छा,
ये वारिस और माइक भी अच्छा।
वारिस, हाँ, बाबा ने क्या कहा, सहयोगी, तीन चीजें बताई है यहाँ पर, एक तो सहयोगी बनाओ, दूसरा वारिस, तीसरा माइक। और जो सहयोगी है उनको वारिस बनाओ, पहले तो सहयोगी, फिर सहयोगी को वारिस, और दूसरी तरफ माइक। ये माइक क्या होता है, कौन सी क्वालिटी की आत्मा है ये माइक जो होंगे वो, ये संपूर्ण ज्ञान में नहीं होंगे पर ये आवाज कर देंगे कि भगवान आ चुका है। ये वो थोड़ी उच्च पद की आत्माएं होगी संसार की तुलना से, संसार में, कि जिनके द्वारा आवाज होगा। ये शायद वो आत्मा हो सकती है जिन्होंने अलग अलग समय पर आकर धर्म की स्थापना की है या कुछ कुछ बहुत महान कार्य किए हैं संसार में, परंतु वो आत्माएं जो कि ज्ञान में नहीं है या फिर सतयुग त्रेता में शायद उनका पार्ट नहीं है इतना, वो केवल अंत में थोड़ा ही ज्ञान लेगी और पर आवाज कर देगी बहुत बड़ा, थोड़ा सा लेगी, जैसे क्राइस्ट की आत्मा है वो थोड़ा सा ज्ञान लेगी, उसको इतना समझ में आ जाए कि भगवान जो है वो प्रेम का सागर है, और वो जब अपने समय पर आएगा तो वो कहेगा कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, उतना उसको पता है। कुछ दूसरी आत्मा है वो केवल इतना ले लेगी कि अहिंसा क्या है, वो अपने समय पर आएगी और अहिंसा की स्थापना करेगी द्वापर से। तो यहाँ इस समय ये आत्मा वो होगी जो बहुत उनके वजह से न जाने कितने ज्ञान में आ जाएगी, ये आवाज फैल जाएगा बहुत ज्यादा। तो बाबा एक तरफ तो कहते हैं माइक, दूसरी तरफ जो है वारिस क्वालिटी, वारिस क्वालिटी वाले ज्ञान से संबंधित आत्माएं,
जो उनसे ज्ञान सुनेंगे वो फिर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो उनके
फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो एक तो सहयोगी बनाओ, वारिस बनाओ, माइक बनाओ। वारिस अर्थात यहाँ पे योगी क्वालिटी की आत्माएं आ जाएगी सारी। एक है खाली ज्ञान सुनाना और बहुतों को ज्ञान में ला लेना, पर एक है योगी आत्माओं को तैयार करना, ये थोड़ी ऊंची सेवा है। जैसे हम योगी है वैसे दूसरे योगी बन जाए, जैसे हम में अनासक्ति का भाव है दूसरों में वो अनासक्ति उत्पन्न हो जाए, जो वैराग हम में है वो दूसरों में वैराग स्थापित हो जाए, जो तपस्या हम कर रहे वही तपस्या करने की इच्छा दूसरों में उत्पन्न हो जाए, या बाबा जो तपस्या हमसे कराना चाहता है हम वही तपस्या दूसरों को कराने के निमित्त बन जाए। तपस्वियों को बनाना, योगियों को बनाना, वैरागियों को उत्पन्न करना, ये ऊंची सेवाएं है। तो बाबा कहते हैं वारिस माइक। लंदन वालों ने इतना बड़ा माइक नहीं निकाला है जो इंडिया तक आवाज है। तो माइक ऐसा होगा जिसकी आवाज सारे विश्व में फैल जाएगी, धूम मचा देगा वो। बाबा की जब भी बाबा इस तरह की बातें करते हैं माइक की, जरूर उसकी नजर किसी एक माइक की तरफ होती है, उसके बुद्धि में जैसे कोई है। जिस जिस साल में बाबा ने माइक की बात कही है उसी उसी साल शायद कोई एक महान, एक कोई वीआईपी निकल के आती है, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे उस आत्मा तक पहुंचे। वो खुद उसको टचिंग नहीं कराता है, इनको टचिंग कराता है कि वहां तक जाओ, उस तक पहुंचो, क्योंकि उसको अगर वो अगर आ गया संपर्क में तो उसके द्वारा न जाने कितनी सेवाएं हो जाएगी। तो बाबा जब भी माइक की बात कहती है, हाँ, दिल्ली वालों, हर ग्रुप को बाबा कहता है
माइक नहीं निकाला है तुमने।
बाबा तो अभी भी कहता है माइक निकालो, अभी तक नहीं निकाला है, पर छोटे छोटे तो बहुत निकले हैं, अभी तो सहयोगी बने हुए हैं। एक ग्रुप और है, ग्रुप नंबर 4। सदा अपने को कौन से सितारे समझते हो, वो बोल दिया किसी ने, रिजेक्टेड। दूसरा बोलो किसी ने बोला सफलता के सितारे, नॉट एक्सेप्टेड। दूसरा बोलो लकी सितारे, दूसरा नंबर पे बोला नॉट एक्सेप्टेड। तीसरा चमकते हुए सितारे, बोल दिया किसी ने ना, तीसरा भाग्य के सितारे, बोला नहीं किसी ने पर बाबा ने बोला नहीं, बरबर बोल दिया आपने। तो बाबा कहते सदा अपने को कौन से सितारे समझते हो, किसी ने कहा सफलता के सितारे, लकी सितारे, चमकते हुए सितारे, उम्मीदों के सितारे, सफलता के सितारे। बाबा कहते हैं बाप की आंखों के तारे, आपने वही ना बोला ना, हाँ वही हो गया। तो नैनों में कौन समा सकता है,
हल्का,
वो तो पलकों पर, नैनों में पलकों पे हल्के को लेके उठा के लेके जाएगा, बिंदु, जो बिंदु है। आंखों में देखने की विशेषता है ही बिंदु में, जितना यह स्मृति रखेंगे कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं, तो स्वतः ही बिंदु रूप होंगे। कोई बड़ी चीज आंखों में नहीं समाएगी, स्वयं आंख ही सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म आंख में समाने का स्वरूप भी सूक्ष्म है। बिंदु रूप में रहते हो, या बड़ा लंबा चौड़ा शहर, यह बड़ा लंबा चौड़ा शहर शरीर याद आता रहता है। सॉरी, ये शहर जैसा दिख रहा है ना, ये शरीर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि हर कर्म में सफलता व प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का साधन क्या है, नहीं बिंदी के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, सफलता और बिंदी के लिए। रोज अमृत वेले क्या करो, तीन बिंदु का तिलक लगाओ। तो तीन बिंदु याद है ना, लगाना भी याद रहता है, क्योंकि अगर तीनों ही बिंदु का तिलक सदा लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, सदा उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा। कौन सी कला में चल रहे हो, उड़ती कला है या कभी उड़ती कभी चलती कभी चढ़ती, सदा उड़ती कला, उड़ने में मजा है ना या चढ़ने में मजा है। चारों ओर के वायुमंडल में देखो कि समय उड़ता रहता है, समय चलता नहीं है, उड़ रहा है। और आप कभी चढ़ती कला कभी चलती कला में होंगे तो क्या रिजल्ट होगी, समय पर पहुंचेंगे, तो पहुंचने वाले हो या पहुंचने वालों को देखने वाले हो, सभी पहुंचने वाले हो, देखने वाले नहीं, तो सदा उड़ती कला चाहिए। तो क्या कह रहे हैं बाबा, बाप की सदा आंखों के जो तारे हैं वो सितारे हम हैं। तो नैनों में कौन समा सकता है, जो बिंदु है, बिंदु अर्थात आत्माभिमानी स्थिति। बाप दादा ने पहले भी हर कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करो, अमृत वेले तीन बिंदु लगाओ। पहले आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहना, अगर उसमें स्थित है तो स्वतः ही बाप की याद आ गई, तो दूसरा बिंदु स्वतः ही लग जाएगा। अगर पहला बिंदु लगा तो उसके भी पहले है, अभी तक जो कुछ हुआ उसको पूर्ण विराम, फास्ट, उसका फिर कोई ज्यादा चिंतन नहीं, जो हुआ सो हुआ, अभी उसको भूल जाओ। आज नया दिन है, नई सुबह है, नया अमृत वेला है, नई मुरली है, नया सब कुछ है, नया संकल्प है, नया जीवन है, आज से सब कुछ चालू करो। अब तक जो हुआ उसको सब भूल के उसको बिंदु लगाया, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहे और स्वतः ही बाप की याद में स्थित है। जो आत्माभिमानी है वही परमात्मा अभिमानी है। तो रोज अमृत वेले बाबा ने कहा ये तीन बिंदु लगाए, कल जो कहा था ना उसमें ये एक चीज भी ऐड कर दो कि बाबा जैसे ये तीन बिंदु हमको सूक्ष्म वतन में बिठा कर लगा रहा है, ये लंबा चौड़ा शरीर याद ना आए, बस बिंदु याद आए। अच्छा, और शुक्रिया।